ये ऑल इंडिया रेडियो नहीं है, ये जहन की आवाज है। काउंटडाउन नहीं है ये कोई। हारमोनियम की कीज की तरह कुछ गाने काले सफेद से मेरे अंदर बैठ गए हैं। यूं लगता है कि सांसों की आवाजाही पर ये तरंगित होते हैं। कभी काली पट्टी दब जाती है, कभी सफेद। इन गानों को याद करना नहीं पड़ता, बस उन पट्टियों को छेड़ना भर पड़ता है। आज जब सूरज अपना असबाब समेटे वापसी की तैयारी में है और मेरे ठीक सामने का पर्वत पेड़ों की छाया को अपने गर्म आगोश में लेने को है, एक नीम अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर एक काली की को छेड़ देता है। ये की सांझ के इस लम्हे में कमरे की बत्तियां बुझाकर खुली हुई खिड़कियों से मध्यम हवा के साथ आती अनूठे कंपन से भरी एक बहुत मधुर रेशमी आवाज के आगे समर्पण करने पर मजबूर कर देती है। खयाम के संगीत से सजी मेरी ये प्रिय गजल दिलीप कुमार और मीना कुमारी द्वारा अभिनीत फिल्म फुटपाथ 1953 से है।
शामे गम की कसम आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम। शामे गम की कसम।
आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये अनोखी आवाज हिंदी सिनेमा के गजल सम्राट तलत महमूद की है। 1953 में इस गजल के आने तक तलत महमूद ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की आवाज बन चुके थे। दोनों ने एक से बढ़कर एक मशहूर गाने हमें दिए। रंजीत मूवी टोन द्वारा निर्मित फुटपाथ को लिखा और निर्देशित जिया सरहदी ने किया था। फिल्म का पार्श्व संगीत तिमिर बलन ने बनाया था, लेकिन इस गाने को संगीतबद्ध खयाम ने किया। इस गाने की खास बात यह भी है कि इसे मजरूह सुल्तानपुरी और अली सरदार जाफरी जैसे दो गीतकारों ने मिलकर लिखा है।
ढूंढती है नजर तू कहां है, मगर देखते देखते आया आंखों।
लेकिन ये गाना है किसका, तलत का या खयाम का? पुराने हिंदी गाने अक्सर अपने साथ ये प्रश्न छोड़कर चले जाते हैं कि इस गाने की खूबसूरती का श्रेय आखिर किसे दिया जाए, गायक को, गीतकार को अथवा संगीतकार को। उन्हें सुनते हुए ये बता पाना बड़ा मुश्किल होता है कि इसे लिखा पहले गया अथवा धुन पहले बनाई गई। संगीतकारों और गीतकारों की मेधा ही कही जाएगी कि धुनें गाने के बोल के साथ बहुत खूबसूरती से मेल खा जाती थी, ऐसे कि दोनों को अलगाना मुश्किल है। कुछ धुनें इस लिहाज से भी बनाई जाती थी कि लिरिक्स या बोल म्यूजिक से ज्यादा उभर सके, ज्यादा मुखरित हो सके। ऐसे गानों में म्यूजिक एक तरह से अंडर प्ले की जाती थी। उन धुनों को निरर्थक इस लिहाज से कहना गलत होगा कि अगर गाने से वो म्यूजिक हटा लिया जाए तो लिरिक्स का प्रभाव एकदम से बैठ जाएगा। खयाम साहब जो इस गाने के भी संगीतकार हैं, उनकी खूबी थी ऐसी धुनें बनाना जिसमें गाने के बोल यूं लगे कि जैसे किसी ने बस कविता का पाठ तरन्नुम में कर दिया हो। उदाहरण के तौर पर फिल्म कभी कभी का गाना,
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए।
सुनिए, खयाम साहब ने कभी कभी फिल्म के म्यूजिक की सफलता के बाद एक इंटरव्यू में ये बताया था कि उनके पसंदीदा गीतकार साहिर लुधियानवी ये मानने लगे थे कि कभी कभी के गाने उनके लिरिक्स की वजह से सफल हुए, ना कि म्यूजिक या धुन की वजह से। और ये बात उन दोनों के बीच एक दरार भी बना गई। संगीत जब इस तरीके का बनाया जाए कि गाने के बोल खिलकर उभर सकें, तो एक गीतकार को ऐसा भ्रम हो जाना स्वाभाविक है। तो क्या समझें फिर, ये गाना किसका है, खयाम का या तलत का? चलिए ये आपके ऊपर ही छोड़ देते हैं। मुझे याद है कुछ पुराने कैसेट्स और एक वॉकमैन। پانچویں کلاس میں پتا سے ملا یہ تحفہ. ان کیسٹس میں سے گاڑھے نیلے رنگ والے نے اس کم عمر میں بھی مجھے چھو سا لیا. طلعت محمود ان بلو موڈ.
ہے سب سے مدھر وہ گیت جنہیں ہے, سب سے مدھر وہ گیت جنہیں ہم درد کے سر میں گاتے ہیں, ہم درد کے سر میں گاتے ہیں.
اس آواز کے عشق میں تو ویسے ہی ڈوبے بنا نہیں رہا جا سکتا. اور جب طلعت گنگناتے ہیں,
آنسو سمجھ کے کیوں مجھے آنکھ سے تم نے گرا دیا, موتی کسی کے پیار کا مٹی میں کیوں ملا دیا, آنسو سمجھ کے.
تو آہستہ آہستہ احساسات کا ایک سمندر سا پھیل جاتا ہے کہیں بھیتر, اور آپ اس شرمیلی نشیلی شہد بری آواز کے سمندر سے ایک ایک بوند پیتے جاتے ہیں.
پھر وہی شام وہی غم وہی تنہائی ہے, دل کو سمجھانے تیری یاد چلی آئی ہے. پھر وہی شام.
اور پھر جیسے ہی یہ گانا شروع ہوتا ہے, شام غم کی قسم, چھپا شہد سے بھرا کوئی چھتا سا ٹوٹتا ہے اور آپ اس آواز کی مٹھاس میں سرابور ہو چکے ہوتے ہیں. اسے انگنت بار پہلی بار کی طرح ہی سننے کے بعد یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس گانے کے روپ میں خیام و طلعت دونوں نے مل کر واسطو میں ہمیں ایک نگینہ دیا ہے. فلم ایوم لوکپری سنگیت کے لیے 30 کے دشک میں بامبے میں نہیں بلکہ سدور کلکتہ میں تپن کمار کے نام سے طلعت نے جب سے گانا شروع کیا تبھی سے اپنے سندر روپ کے لیے, وہ فلم کے ہیروز کے لیے ایک چنوتی, اور اپنی شاندار گائیکی کی وجہ سے سنگیتکاروں کے چہیتے بنے رہے. سنگیتکار انیل بسواس نے انہیں کلکتہ چھوڑ کر بامبے آنے اور مکھیہ دھارا سنیما کے لیے گانے کے لیے کہا, کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ طلعت کی مدھر ریشمی آواز فلمی غزل گائیکی کے لیے بہت عمدہ رہے گی. 1949 کے آخر میں جب طلعت کا ممبئی آنا ہوا تو انیل بسواس نے ہی انہیں ان کے واستوک نام طلعت محمود کے نام سے پہچان دلائی, انہیں مزرو سلطان پوری کا لکھا فلم آرزو کا گانا دے کر.
ہے دل مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں کوئی نہ ہو اپنا پرایا, مہرباں نا مہرباں کوئی نہ ہو.
دلیپ کمار پر فلمائے گئے اس گانے نے پورے دیش میں دھوم مچا دی. دلیپ انیل بسواس اور طلعت تینوں کے لیے ہی یہ غزل سفلتا کی راہ پر شروعاتی میل کا پتھر ثابت ہوئی. طلعت کے روپ میں ہندی فلم سنگیت کو ایک تازی اور علیحدہ آواز مل گئی تھی. طلعت محمود کی آواز میں ایک انوکھا کمپن تھا جو اب تک کسی بھی گائک میں دیکھا نہیں گیا تھا. انیل بسواس کی پارکھی نظر نے یہ جان لیا تھا کہ غزل رینڈیشن میں یہ ہلکا وائبریشن کمال لگے گا. جیسے جیسے طلعت سفلتا کی سیڑھی چڑھتے گئے, سمبھوتہ ایرشا کی وجہ سے کچھ شکایتیں خاص طور سے ریکارڈنگ آرٹسٹ کی اس طرح کی آنے لگی کہ اس کمپن کی وجہ سے ان کے گانوں کو ریکارڈ کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن انیل بسواس ہمیشہ طلعت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہے. ان کا کہنا تھا کہ طلعت محمود اکلوتے انوکھے ہیں اور ان کا یہ نرالا قدرتی کمپن ہی طلعت کو طلعت بناتا ہے, انیتھا دیش میں ہزاروں طلعت محمود ہوتے. یہ کمپن ہی تو ہے جو ان کے گائے گانوں میں ادبھت آکرشن پیدا کر دیتا ہے, ایک اترکت سندرتا, شبدوں کا ایک الگ سا ناد, एक भावुक कोमल नाद जो देर तक कानों पर टिक जाता है। इस गाने में भी तो तलत की आवाज का कंपन गाना खत्म होने के बाद भी टिका रह जाता है।
रुत हसी है तो क्या चांदनी है, तो क्या चांदनी जुल्म है और जुदाई से।
मखमली आवाज के साथ सटीक उच्चारण और सुर के सभी उतार चढ़ाव को कुशलता से निभाने वाले तलत आधुनिक गजल गायकी के अग्रदूत कहे जा सकते हैं। गजल की किंवदंती बन चुकी जगजीत सिंह भी उन्हें अपना आदर्श मानते रहे। तलत महमूद ने गैर फिल्मी गजलें भी गाई जो उन दिनों बहुत लोकप्रिय हुई और फिल्मों से अलग स्वतंत्र म्यूजिक में लोकप्रिय गजलों के एक चलन की शुरुआत हुई। तलत गजल गायकी में पोइट्री के महत्व को जानते थे और उनका गायन बहुत भावपूर्ण, कोमल लेकिन अत्यंत सहज होता था, जिसकी वजह से अक्सर ऐसा लगता है कि कोई बहुत अपना करीबी दोस्त आपके कंधे पर हाथ धरे गुनगुना रहा हो।
दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम।
शायद ये वजह भी रही कि वो अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा बसे रहे, लेकिन इस सहज गायकी के पीछे एक विशेष निपुणता या कला भी थी जिसे अनिल विश्वास जैसे कला के जानकार पकड़ पाते थे। जी वेणुगोपाल जो तलत को बहुत मानते थे, उनका कहना सही था कि सामान्य जन को तलत के गाने आसान लगेंगे, लेकिन अगर कोई उनके गानों के सूक्ष्म उतार चढ़ाव और मखमली कंपन की नकल करने की कोशिश करेगा तब समझ पाएगा कि दरअसल वो कितने कठिन हैं। इसी बात की पुष्टि करते हुए एक लोकप्रिय टैलेंट हंट शो को जज करने के दौरान अनिल विश्वास को कहते हुए पाया गया कि हमारे पास बहुत से महान गायक हैं और किशोर, रफी या मुकेश की नकल करने वाले भी बहुत से गायक हैं, लेकिन मुझे एक गायक भी ऐसा दिखाओ जो तलत महमूद की नकल कर सकता हो। तलत का अंदाज ऐसा था कि उनके गानों में बहुत कम वाद्य यंत्र और सरल धुनों का इस्तेमाल किया जाता था। उनके गाए सबसे बेहतर गाने वही हैं जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगभग नेपथ्य में चले जाते हैं और उनकी आवाज गूंजती रहती है। सुनिए तलत महमूद और आशा भोसले का गाया गाना,
प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी, तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं।
नूतन और खुद तलत महमूद पर फिल्माए गए फिल्म सोने की चिड़िया 1958 के इस गाने के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और इसे संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने। ओपी नैयर और तलत, जानकार इस जोड़ी पर आश्चर्य करेंगे क्योंकि दोनों का अंदाज बहुत अलग अलग है, लेकिन देखिए कितनी खूबसूरती से ओपी नैयर ने अपनी स्टाइल से जरा सा हटते हुए तलत की आवाज के अनोखेपन का इस्तेमाल किया है। ये तलत की भी खुशकिस्मती थी कि वो संगीत के उस समय में थे जब राग और लयात्मकता सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती थी, क्योंकि रफी या किशोर की तुलना में उनकी कुछ सीमाएं थी, लेकिन उनके गायन में राग, सुर और लय भरपूर थे। उनकी इस विशेषता को देखते हुए मदन मोहन, रोशन, एसडी बर्मन, अनिल विश्वास और नौशाद जैसे संगीतकारों ने उनसे बहुत से अमर गीत गवाए, जिन पर आज भी इन संगीतकारों के म्यूजिक से ज्यादा तलत की लहराती हुई आवाज की छाप है। राग पहाड़ी पर आधारित हमारा आज का ये गाना खय्याम के शुरुआती सफल गानों में से है जिन्होंने खय्याम को खय्याम बनाया। ऐसा कहा जाता है कि खय्याम के म्यूजिक में राग पहाड़ी का वही महत्व है जो राग भैरवी का नौशाद के और राग बागेश्वरी का श्री रामचंद्रन के म्यूजिक में है। ये भी कहा जाता है कि खय्याम साहब ने इस गाने को टुकड़ों में अलग अलग रिकॉर्डिंग कर एक साथ चस्पा करके तैयार किया है, जैसा कि आजकल अमूमन सभी गानों में किया जाता है, किंतु 50 के दशक में ऐसा करना शक की निगाह से देखा गया। लेकिन देखिए तो इस गाने का सौंदर्य, इसे संगीत मर्मज्ञ सुधी जन और सामान्य सुनने वाले सभी का भरपूर प्यार आज भी मिल रहा है। गाने की शुरुआत में खयाम रात का वातावरण अपने प्रेल्यूड म्यूजिक के जरिए बनाते हैं, जिसमें वॉयलिन की आवाज एक समा सा बांध देती है। फिर एक चेहरा स्क्रीन पर नमूदार होता है, दिलीप कुमार। अक्सर जिस गाने में दिलीप कुमार भी होते हैं, हम जैसे बहुत से लोगों के लिए बस दिलीप कुमार ही होते हैं। यहाँ तो बस दिलीप ही है स्क्रीन पर। उन्हें ट्रेजेडी किंग कहते हैं। दर्द की कोई सुंदरता, ओज और गमक अगर होती है तो वो उनके चेहरे पर दिखती है, ब्यूटी ऑफ मेलंकली। लगभग पूरा गाना उनके चेहरे पर फिल्माया गया है, जो इस बात को भी तस्दीक करता है कि कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो बिना कुछ किए सिर्फ अपने चेहरे के हाव भाव से देखने वालों को बांधे रख सकते हैं। पर्दे का हिलना, सिगरेट के धुएं के छल्ले और दिलीप की आंखें, उफ।
चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्द जुदाई कहीं।
एक लहर की तरह चलता है ये गीत, कहीं कोई झटका नहीं, कोई रोड़ा नहीं, कोई टोक नहीं, कोई शब्द चुपता नहीं। कर्कश होना तो दूर, तलत की आवाज कानों पर इतनी हौले से गिरती है कि लगता है कि तलत शब्द बहुत सावधानी से रूई के फाहों की तरह उठाकर आपके जानिब रखते जा रहे हैं। आप सुन नहीं रहे बल्कि अपने कानों से घूंट घूंट पी रहे हैं। यू डोंट लिसन टू इट, रादर यू सोलो इट नॉइजलेसली सिप बाय सिप। तो YouTube के लिंक पर आइए।
अब तो आ जाके अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहराओं में खो गई।
देखिए कि पर्दे हिल रहे हैं, रात है, रात की खामोशी है। सुनिए कि इस खामोशी की भी एक आवाज है, एक पुकार है, एक विब्राटो है जो देर तक दिल में मौजूद रहने वाला है।
शाम गम की कसम।